गोविंदाय नमो नमः
गोविंदाय नमो नमः
आय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी
नंदनाय च
नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः तेरु श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यं दाति स्वपदान्तिकं मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च उपासिन्दुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्यम् नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। जैसे कि एक बार चर्चा हो चुकी है, ये जो विशिष्ट भागवत का प्रसंग है कि हमारे पास डबल एडवांटेज है, दोहरा दोहरी सुविधा है। श्री प्रभुपाद की भक्तिवेदांत तात्पर्य और श्री प्रभुपाद ने बहुत पहले के ऊपर एक प्रवचन की मालिका दी थी। भागवत तो प्रार्थनाओं के सत्र हैं, अलग अलग सीरीज ऑफ प्रेयर्स आते हैं भागवत में। श्री प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट्स अपने तात्पर्यों को माय प्राइवेट एक्सटसीज करके कहा था। जब मैं अकेला प्रभुपाद जी के सामने एक बड़ा ग्रंथ था
जिसमें लगभग 8 से 12 विविध विभिन्न वैष्णव आचार्यों की टीका थी। जब प्रभुपाद श्लोक पढ़ते थे, फिर हर एक आचार्य का एक एक उनकी जो टिप्पणी है उसको पढ़ते थे, फिर सोचते थे कि मैं इसमें से क्या लूँ, और अगर उनको कोई एक विशिष्ट प्रसंग स्फुरण आ गया तो उसका भी फिर समावेश होता था। हरीशोरी प्रभु जो कि 18 महीने तक श्रील प्रभुपाद जी के अचन थे, सेवक थे, वो हमेशा उनके डिक्टेटिंग मशीन के ऊपर का काउंटर देते थे कि कितने हो गए आज नंबर, अगर 80-90 नंबर हो गए, काउंटर होता है ना 1-2-3 आगे जाता है, 80-90 हो गए तो उनको लगता था कि आज प्रभुपाद ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा हो गया, आज ज़्यादा ट्रांसलेशन हो गया। और कभी कभी 20 या 30 ही होता था, मतलब आज ज़्यादा काम नहीं हो पाया। तो एक बार उन्होंने उस काउंटर को देखकर कहा सिर्फ 40। तो प्रभुपाद जी को उनके मन का भाव समझ में आ गया। प्रभुपाद जी को लगा कि मेरा सेवक सोचता है कि आज मैंने काम नहीं किया। पर ने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो ये सारे 12 स्कंद 6 महीने में समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम समाप्त करना नहीं है, मेरा काम ये है कि इसके अंदर का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप जैसे लोगों की बुद्धि के अंदर प्रवेश करना चाहिए, चैलेंज वो है। देखिए ये भागवत तात्पर्य हम तक पहुँचाने के लिए प्रभुपाद ने कौन सा समय चुना, सुबह 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, जब सारा विश्व लगभग शांत है, तमोगुण में समझो या शांत समझो जैसे भी है, और उस समय मतलब ऐसे होता था जैसे प्रभुपाद समस्त आचार्यों के सामने खड़े हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। एक वृद्धा स्त्री ने प्रभुपाद से कहा स्वामी जी प्लीज़ प्रे फॉर मी, स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा मेरा कर्तव्य है, वो यही मेरा काम है, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वेस्टर्न जगत में मेरे लिए प्रार्थना करो का एक विशिष्ट स्थान होता है, प्रे फॉर मी प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, अर्थात उनके प्रार्थना से जो मिलेगा वो उनको भौतिक ही लाभ चाहिए होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसका अर्थ ये लिया, क्या आप केवल आपके शिष्यों के लिए प्रार्थना करेंगे? जैसे आज तक जो भी कोई समझते हैं कि ये गुरु है या कोई परिशिष्ट महात्मा है, तो वो उनके फ्लॉक उनके ग्रुप को उसका उद्धार करेंगे। एक महाप्रभु हैं जो कह रहे हैं कि जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, नहीं है आज किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे ये कृष्णा या वासुदेवा है, श्री कृष्ण का वर्णन है, कृष्णा आगे क्या आएगा हिंदू गॉड, हिंदुओं की देवता है। कहाँ लिखा है, क्या भगवान कृष्ण ने कभी कहा है कि मैं हिंदू हूं? अर्जुन तुम्हारी सारी समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो, तुम पहले गर्व से कहो कि तुम हिंदू हो। गर्व तो यह है कि हम कृष्ण के दास हैं, और वो गर्व नहीं है हमको, हम माया के दास बनते हैं ये सोचकर। कृष्ण परम सत्य है और माया को ठगिनी कहा गया है, ठकाना ठगाना तो उल्लू बनाना, उसका मतलब क्या है, आप उसको ये भाव देते हो कि इसमें आपका लाभ है। कोई है एक साड़ी लोगे तो दो साड़ी लेंगे तो एक साड़ी फ्री, इसमें आपका लाभ है, 2 शर्ट पीस लेंगे तो 1 शर्ट पीस फ्री, आपको इसमें आपका लाभ है। लेकिन एंड में हंसी किसके मुख पर होती है, दुकानदार के, वे फंस गए लोग है कि नहीं? नहीं तो हम सब मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं अपने स्कूल में, कौन ऐसा है जो 2 वस्तु के ऊपर 1 वस्तु फ्री देगा? कोई संसार में ये फ्री नाम की वस्तु है कोई? सबको पता है, लेकिन यही माया का जाल है। नहीं, ये 2 लिया ना इसमें से ये फ्री मिल गया। तो श्री कृष्ण है वो सत्य है, माया है वो ठगिनी है, वो हमेशा हमको ये भाव देगी कि इसमें आपका लाभ हो रहा है, असल उसमें नुकसान ही है हमारा। इसलिए यहाँ पर हम सोच रहे हैं हिंदू गॉड के बारे में, भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ आप हिंदू बनिए, जीवन का उद्देश्य है हिंदू बनना। अर्थात हमारा इस हिंदू टर्मिनोलॉजी से कोई दुश्मनी नहीं है, हिंदू अपने आप को बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका अर्थ क्या हो गया, हिंदू का अर्थ क्या है? देखो बात कहते हैं कि हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है सनातन धर्म में, वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार वर्णाश्रम बापरी, इसका मतलब ऊंच नीच नहीं, ऊंच नीच नहीं। वर्णाश्रम पद्धति का अर्थ होता है हरेक व्यक्ति को उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा होनी चाहिए उसमें। वर्णाश्रम आचार्यवता पुमान विष्णु आराध्यते पंथा ना अन्य तोष कारणम, ना क्लियर है कि अगर आप कहेंगे हम वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार काम कर रहे हैं उसमें विष्णु तत्व विष्णु तोष विष्णु का संतोष है और हो रहा है उसमें, अगर भगवान विष्णु के संतोष के लिए कार्य नहीं हो रहा है तो वो वर्णाश्रम कैसे हो गया। जैसे हम हॉस्पिटल वाले समझते हैं कि भक्तिदानंद हॉस्पिटल एक वर्णाश्रम प्रोजेक्ट है, मतलब कोई सर्जन है तो वो सर्जन की सेवा कर रहा है, वार्ड बॉय है तो वार्ड बॉय की सेवा कर रहा है। काम की दृष्टि से वार्ड बॉय ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकता, वो कहेगा आप क्यों हमेशा काटते हैं, मैं आज काटूं, नहीं होगा ना, ये अपनी सेवा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में वो सर्जन नहीं, वार्ड बॉय नहीं, वो कुछ नहीं है, सब कृष्ण दास। तो हमें जीवन में जैसे हमारी पांच उंगलियां है, ये पांचों उंगलियां एक ही हाथ की उंगलियां हैं लेकिन सबका कार्य अलग है ना। हम कहेंगे आप कैसे हैं तो ये इसका अर्थ अलग होता है, ये उंगली दिखाएंगे तो उसका अर्थ अलग होता है। कोई चीज अगर करनी है, अगर रिंग, इसको मराठी में अंगूठी कहते हैं लेकिन वो इस अंगूठे में कभी नहीं होती बल्कि नाम उसका अंगूठी है, फिर भी इसके लिए अलग अलग उसके कार्य हैं। तो आर्टिफिशियल एकता भौतिक जगत में सब नहीं, हम सब एक है, कैसे एक है वो हमको समझना चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि ये सब घोषणाबाजी है, हम सब अलग अलग है, समझे, आप छोटे हैं मैं बड़ा हूँ, बस यही रहेगा ऐसे। फिर संसार का चक्र परिवर्तित होता है, जो आज बड़ा कह रहा है वो छोटा हो जाता है, फिर उसे समझ में आता है कि बाप रे कितना संसार में अन्याय है। आपको क्यों समझ में आ रहा है अभी, नहीं अभी उसे भुगतना पड़ रहा है इसलिए। तो जीवन के प्रवाह से हरेक व्यक्ति कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलता ही रहता है। कोई पैसे से ऊपर है, कोई शक्ति से ऊपर है, कोई नाम से ऊपर है, यश बल जाति कई चीज़ें हैं जो हमको ऊपर ले जा सकती है और कई चीज़ें जो हमको नीचे ले जा सकती है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं स्त्रियों शूद्रों तथा वैश्य तेपी यान्ति पराम गति, पराम गति मुख्य महत्वपूर्ण गोष्ठ वस्तु है इसमें। तो कुंती देवी, हम पहले कोई श्लोक का तात्पर्य देखेंगे धीरे धीरे आप सबकी गति के अनुसार, और फिर उसके ऊपर का जो लेक्चर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस सुंदर तात्पर्य का आरंभ कुंती महारानी ऐसे करती है, द लॉर्ड बीइंग अनअप्रोचेबल टू एनी मटेरियल एसेट्स आउट ऑफ अनबाउंडेड एंड कॉजलेस मर्सी डिसेंड्स ऑन द अर्थ इन ऑर्डर टू शो हिज स्पेशल मर्सी अपॉन हिज अनअलॉयड डिवोटीज एंड टू डिमिनिश द अपसर्जेस ऑफ डिमोनियक पर्संस। श्री कृष्ण क्यों अवतार धारण करते हैं, वेदों के लिए एक बड़ा रहस्यमय प्रसंग है ये। भगवान का अवतरण यहाँ पर होना, इसका अर्थ क्या हो गया। इंग्लिश में अवतार के लिए शब्द है इनकारनेशन, कार्ने, कार्ने का मतलब है फ्लैश, जैसे कार्निवोरस शब्द है ना, कार्निवोर कार्निवोरस, कार्ने का मतलब होता है फ्लैश डी मास। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न फिलोसॉफिकल जो प्रणाली है उनका, उनकी धारणा ये है कि जो स्पिरिट है जो दिव्य है वो जब हड्डी मांस का रूप लेके आते हैं उसको कहने का अवतार। वेद ऐसे नहीं बोलते, हम ये नहीं समझते कि भगवान जो कि प्योर दिव्य चिन्मय है वो अभी हमारे जैसे हड्डी मांस का एक शरीर बनकर लाते हैं इधर। एक किसी बुकशॉप में था मैं, एक व्यक्ति निश्चित वो अहिंदू था, हिंदू तो नहीं लगता था उसके चेहरे और उसके बातचीत करने से, कहता कि आप एक गुरु को या किसी को भगवान मानते हो हाँ, वो भी खाता है, वो भी जाता है टॉयलेट, वो भी बीमार गिरता है, तो उसमें और हम में अंतर क्या है। मैंने कहा अभी से पब्लिक प्लेस में क्या बहस कर रहे हैं इनके साथ, मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन ये एक लोगों के मन में डाउट है कि क्यों ऐसे ही, ये सिंपल एक वनस्पति है और उसको हम तुलसी मान, उसको पूज्य समझ कर उसको प्रणाम करें, ऐसे हम तो बचपन से थोड़ा उसको समझ में है तुलसी महारानी है उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद जब अमेरिका ले गए और उन्होंने ये किया तो एक भक्त कह रहे हैं कि मैंने मेरे पिताजी से बताया कि मॉर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, तो सुबह उठकर गाना संसार दावा, ठीक है उधर भी चर्च में गाते हैं, सुबह नहीं गाते उधर, चर्च दोपहर को होता है। लेकिन एक पेड़ को एक रूम के बीच में रखकर उसके गोल गोल फिर घूमना उसके ऊपर, ये क्या है भक्ति, ये क्या है ये। जैसे राधानाथ महाराज के पिता उनको मिलने आए थे कि तुम मेडिटेशन सीखे हो और भारत भर घूमे हो, हिमालय में रह चुके हो और अभी न्यू वृंदावन में रह रहे हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं। उन्होंने कहा ड्यूटी वर्शिप। ड्यूटी वर्शिप क्या समझ में उनके पिताजी को। जब वो आ गए वो देख रहे हैं कि ये राधा कृष्ण छोटी मूर्तियाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। उन्होंने कहा ये इतने साल मेडिटेशन करने के बाद ये सब गुड्डियों से खेलना, डॉल वर्शिप, ये क्या है। और उनको तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो ऐसे लगे जो कई कई घर में होता है ना, नमक और पेपर के लिए होता है शेकर, सॉल्ट पेपर शेकर बोलते हैं। तो उनको लगा ये क्या भक्ति है, ये लीव इतना बढ़ चुका है। और एक दूसरे से उनका दोष नहीं है, उनकी संस्कृति नहीं है। वो भारत में कम से कम संस्कृति है, हम कहेंगे हम तुलसी मारने क्यों पूजा करेंगे, मतलब पूजा करनी चाहिए हम जानते हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं हम नहीं करना चाहते। ये एक कल्चर की बात है, एक संस्कृति की बात है। राजा थे, साधु उनसे यही बहस कर रहे थे कि मैं मूर्ति पूजा वगैरह नहीं मान सकता, मैं सब कुछ भौतिक है इस जगत में, तो जो भौतिक जगत में आ गया उसको भी भौतिक समझना चाहिए। तो जो साधु थे उन्होंने राजा के प्रधानमंत्री से कहा कि मेरे सामने ये कैनवास है, कपड़ा, जिसके ऊपर रंग लगाकर कुछ पेंटिंग किया गया है, आप इसके ऊपर थूको। का क्या बात कर रहे हैं आप, बोले इतने एक्साइट होने की क्या जरूरत है, कपड़ा है मामूली मामूली कपड़े के ऊपर कुछ रंग लगाए हैं और मैंने आपको कह रहा हूँ उसके ऊपर थूको। बोले ये महाराज है हमारे, जी राजा की पेंटिंग थी वो। बोले राजा तो आपके बाजू में खड़े हैं, ये राजा नहीं है। राजा को बात समझ में आ गई कि भले ये कपड़ा है किसी फैक्ट्री में बनाया था, ये रंग है या तो नेचुरल है या कहीं से लगे थे, और किसी आर्टिस्ट ने उस रंग को ऐसे 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 करके एक किसी व्यक्ति का चित्र बना दिया, सडनली वो महाराज बन गए हमारे। अब राजा के सामने, राजा के समक्ष उसके पोर्ट्रेट के ऊपर कौन भले थूक सकता है। एक व्यक्ति ने पूछा था कि जिस मूर्ति की आप सेवा करते हैं, कुछ महीने पहले एक वर्कशॉप का काम था, वो वर्कशॉप में लोग कोई छिन्नी मार रहा है, कोई पॉलिशिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब जिसको आप भगवान समझ रहे हैं कि भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरे जीवन की समस्या का समाधान कीजिए। दो महीने पहले एक वर्कशॉप में लोग उसको ऐसे ही हटाते थे, रखते थे, चार पांच मिस्त्री लोग, स्टोन कटर, मेसन या ऐसे लोग, ये आपके भगवान ऐसे तीन चार लोग बना सकते हैं। दो बातें आपकी, आपके लिए प्रश्न है, कोई आपको ऐसे पूछेगा क्या जवाब देंगे, हाँ बस कोई है जवाब, क्या हम क्या मूर्ति पूजक हैं केवल। बेसिकली इसमें बात ऐसी है कि जैसे कोई कागज का टुकड़ा, कल तक कागज है, प्लेन वाइट पेपर, वो गया नासिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस, वहाँ पर कुछ प्रिंटिंग विंटिंग हो गया, बाहर निकलता है तो वो पैसा हो गया। नहीं, कौन मानता है उसे पैसा, आप मानते हैं, हम मानते हैं। कोई कोई गवर्नमेंट जैसे हो गया है जगत के इतिहास में कि सरकार ही बर्खास्त हो गई, वो देश ही बर्खास्त हो गया, कुछ और नाम हो गया, तो उसके पुराने सारे बैंक नोट थे उसका क्या लाभ था, तो उतने हजार देंगे तो कुछ आएगा नहीं उसका। तो ऐसे हमारे अपने जीवन में उदाहरण है कि कागज इसके ऊपर कुछ प्रिंट करो तो अचानक वो लक्ष्मी बनती है, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से नहीं लेकिन कुछ मिलती जुलती प्रणाली से, शास्त्र के अनुसार शैली दारुमयी मृणमयी, आठ प्रकार की काष्ठा, आठ प्रकार की वस्तुओं से भगवान की मूर्ति बन सकती है। ठीक है, मूर्ति तो कोई बना सकता है लेकिन उसको भगवान कैसे माने हम। इसलिए श्री प्रभुपाद जी एक तात्पर्य बताते हैं, कब कोई मूर्ति मूर्ति न होकर अर्चा विग्रह हो जाती है, कब मूर्ति अर्चा विग्रह तब हो जाती है जब एक आचार्य वहां पर उपस्थित होते हैं, उनके बिना वो मूर्ति मूर्ति रहती है। वो एक भगवान के शुद्ध भक्त उस स्थान पर आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, क्योंकि ये सारी जनता है जिनके पास आपको सब जगह देखने की दृष्टि नहीं है, ये आप कृपा करके इस अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हो जाइए, इसमें आप एंटर कीजिए, आप इसमें प्रवेश लीजिए। ऐसी प्रार्थना का वो अनुमोदन करके अगर किसी ने प्रार्थना की है तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, फिर भगवान उस मूर्ति में प्रवेश करते हैं। रूपा जी को लोगों ने प्रश्न पूछा था कि भारत पर परचक्र आ गया, मोगल तुर्क अनेक प्रकार के लोग आ गए, कई लोगों ने मंदिर में जाकर हमला करके मूर्तियां फोड़ दी। रूपा ने कहा व्हाट वॉज डिस्ट्रॉयड वॉज द डीटी, जो उन्होंने तोड़ा था वो तो पत्थर की मूर्ति को तोड़ा था। हाउ कैन दे डिस्ट्रॉय गॉड, भगवान को तोड़ना असंभव है। तो फिर प्रश्न उठता है फिर इस मूर्ति की इतनी सेवा क्यों करें फिर? वह इसलिए क्योंकि ये हमारा साधन है। अब हमारे में इतनी दृष्टि नहीं है कि हम सब जगह पर भगवान को समझ सके, कण कण में भगवान, सब जगह, सब भूमि गोपाल की बोलने के लिए ठीक है, शुरुआत तो कीजिए कम से कम। जैसे कोई बच्चा अपने पिता से कहेगा कि मैं आपका एकदम आज्ञाधारी बच्चा बन के रहूंगा, खाली मुझे स्कूल मत भेजना। ऐसे क्यों? अरे कम से कम हमारी एक आज्ञा पालन करो, 3 घंटा जाके बैठ के आओ कम से कम। तो जो शुरू शुरुआत होती है प्ले ग्रुप या नर्सरी, उसमें क्या होता है, हमें जाते हैं कुछ खेल करते हैं खाते हैं घर में आते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जो है वो कम से कम एक जगह जहाँ पर भगवान का टेम्पल, भगवान का मंदिर और वहाँ पर भगवान है। क्या बाहर देखकर ये झाड़ी और ये सब पोल्यूशन देखकर कह सकते हैं कि इसमें भगवान है? है, उसमें भगवान नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या हमको देखने की दृष्टि है वो? ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सबसे पहले एक आचार्य होने की आवश्यकता है जो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्लीज कृपा करके आप आइए, नहीं तो भगवान किसी भी असुर और किसी भी देव दानव किसी की भी रिक्वेस्ट को मानने के लिए भगवान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लोग सोचते हैं कि नरसिंह देव को जब हिरण्यकशिपु ने ललकारा कहा है तेरा भगवान, उसके उत्तर में वो आ गए, ये उतनी सही बात नहीं है। हिरण्यकशिपु चाहे कितना ही बड़ा असुर हो, उसके चैलेंज से भगवान आना कोई अनिवार्य नहीं है, इनकम्पल्सरी नहीं है। ने क्या पूछा था प्रहलाद से, तेरा ये विष्णु कहाँ पे है, तेरा विष्णु कहाँ पे नहीं है? हिरण्यकशिपु को लग रहा था कि ये बच्चा जानबूझकर मुझे उकसा रहा है ऐसे उल्टे सुलटे जवाब देकर, कहाँ आती है तेरी शक्ति, कहाँ से तेरी शक्ति आती है? प्रहलाद ने कहा जहाँ से आपकी आती है। वो तो और भड़क गया। असुरों का सबसे पहला ये ईगो होता है कि मेरी शक्ति मेरी है, हाँ ये मैंने मेरे तपबल से लाई है, ना किसी उधार मांगी है। और भक्त है वो उनको क्लियर कट समझाने के, देखो जैसे कोई कह रहा है कि ये मेरे पैसे हैं, अरे तेरे पैसे क्या, पहले तो रिजर्व बैंक में थे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापे वो मनी है ना, वो नहीं तेरे पास आया कैसे? अगर तू कहेगा ये मेरे पैसे हैं वो जाली हो गया फिर, नहीं अगर आपने ये 100 रुपए की नोट मेरी है, मैंने खुद प्रिंट किए उसको, तो बोले फिर रख दो उसको, फिर वो बोनाफाइड नहीं है। इसलिए वास्तविक शक्ति सामर्थ्य जो क्षण भगत इति गणा, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, वो सब आते हैं भगवान से। असुरों का सबसे वीकेस्ट पॉइंट और सबसे हाई पॉइंट ऑफ एंगर, जो लास्ट उनको क्रोध देने वाला पॉइंट है, वो है कि जो आपकी शक्ति है ना वो भी सब उधार की है और वो भी सब आपने भले तप किया है। तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब होता है कोई ताप सहन करना, कोई निगेटिव वस्तु को स्वीकारना कि मैं खाऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा, मैं ध्यान करूंगा। किसके लिए? आप किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। हम लोग तो मानकर कहते हैं, हम लोग सुबह जाप करते हैं, जाप का मतलब क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद ने समझाया इसका सिंपल अर्थ यह है, हे कृष्ण सर्वाकर्षक, हे राम आनंद के भंडार, रमयति राम और हरा, हे भगवान की शक्ति मुझे अपनी सेवा का एक अवसर दो, एक चांस टू सर्व यू। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात है। कोई तपस्या कर रहा है, जैसे शिव जी के सारे जो भी कृपा पात्र लोग हैं वो तपस्या करते हैं करते हैं करते हैं, फिर शिव जी पूछते हैं क्या चाहिए, मालूम नहीं सर्विस चाहिए या और कुछ चाहिए, गारंटी नहीं ना तपस्या करने वाले आदमी के मन में क्या है, कोई ज्ञान पढ़ रहा है, कर्म ज्ञान योग सब चीज में उस व्यक्ति के मन में क्या है समझ में नहीं आता। इन भक्ति योग में मानो ना मानो, कभी कभी होता है ऐसा कि हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण जब करते हैं फिर सर्विस सेवा आती है, बोलते ये नहीं चाहिए, बोले अरे ऐसे कैसे, रोज हरे कृष्ण करते हैं तो उसका मतलब सेवा मांगते हैं रोज, तो सेवा आती है फिर उसके बारे में कंप्लेंट करने की जरूरत क्या है, बहुत सेवा हो गई क्योंकि बहुत जप किया था इसलिए। तो भक्ति योग का मतलब है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये डायरेक्ट प्रेयर है, इन कर्म ज्ञान योग ये इनडायरेक्ट वस्तुएं हैं। हिरण्यकश्यप को सबसे बड़ा क्रोध ही हो गया कि ये मेरी शक्ति है, इस स्तंभ में है क्या तेरा भगवान, तो वो बोल रहे कि कहां पे नहीं है, मतलब है उसमें, ठीक है अगर ये तेरा भगवान है इसमें तो मैं अपने गदा के प्रहार से दिखाता हूं कि तेरे हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज की श्रद्धा जो है उसको चकनाचूर करना चाहता था, जो उसने गदा मारी उसके ऊपर उसका मतलब क्या हो गया, ठीक है ये तेरे श्रद्धा का स्थान है ना, ये ले तोड़ दिया उसको। असुरों की बुद्धि चाहे कितनी भी प्रगल्भ हो या कितने भी असुर पावरफुल हो, वो इसी दिशा में चलती है, ये तेरा मंदिर है ठीक है इसको तोड़ दिया, ये तुम्हारे ग्रंथ है उसको जला दिए, ये आपका ये है ये आपकी कंठी माला है इसको तोड़ दी, उससे उस व्यक्ति की कोमल श्रद्धा वाले कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा टूट सकती है। कनिष्ठ कह निष्ठा, कहाँ है उसकी श्रद्धा, नहीं ज्यादा उससे, इसलिए जल्द से जल्द कनिष्ठ स्तर से कम मध्यम स्तर तक आने की कोशिश करनी चाहिए। कनिष्ठ और मध्यम के बीच में फासला कम है लेकिन मध्यम और उत्तम के बीच में बहुत बड़ा है, लाइफ टाइम्स का है कभी कभी, लेकिन अगर हम, और इसलिए ये जो विस्तृत परपोर्ट्स हैं प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, ये हमारा सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है। जो व्यक्ति आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है जिसने प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का अध्ययन किया है और वो कह रहा है कि मेरी श्रद्धा नहीं हो रही है, मन में डाउट्स आ रहे हैं, नहीं ये जो है ना ये सबसे अच्छा एनर्जी फूड है, ये सबसे अच्छा मेडिसिन है, सबसे अच्छा वैक्सीनेशन है। श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से निकले हुए वर्ड्स शब्द है ये, वो अगर हम हमारे कानों द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचाएंगे कोई वहां पर संशय के लिए स्थान नहीं होगा। तो वास्तविक हिरण्यकशिपु के ललकारने पर नहीं बल्कि प्रहलाद के सिंपल बालक सुलभ कहने से कि भगवान क्यों नहीं वहां पर है ना, सब जगह पे है वहां पे क्यों नहीं है। याद रखिए भगवान कभी असुरों का या तो उनका नाश करने में भी उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है या उनके साथ चैलेंज करने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि अपने भक्तों का कहा हुआ कुछ भी संभालने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा रुचि उसमें है। सिंपल बात है, भगवान परमात्मा है, परमात्मा नहीं रहेंगे तो आत्मा कैसे रहेगी, गाय कितना बड़ा असुर है, भगवान ने कहा हम निकल जाते हैं यहाँ से, बस परमात्मा निकल गए तो वो ढेर हो गया उधर ही, चाहे शक्ति कितनी भी हो चाहे बुद्धि कितनी भी हो। तो कुंती महारानी इस प्रार्थना में भगवान प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि कृष्णा, कुंती महारानी स्पेसिफिकली एडोर्स द इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा अबव ऑल अदर इनकार्नेशन बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर इनकार्नेशन ही इज मोर अप्रोचेबल। ऐसे अवतार सब एक ही भगवान के अवतार हैं, भगवान एक है अवतार अनेक है, गॉड इज वन हिज इनकार्नेशन आर मेनी, अवतार ही एक ही है, अवतार कितने हैं, अवतारो ही असंख्य या हरे सत्व निधे द्वजा यथावदासिना कुल्या सरस्यासु सहस्रशः। शुद्ध गोस्वामी बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि जैसे नदी की पानी के ऊपर लहरें आती है, वेव्स ऑन ए रिवर वाटर के ऊपर की संख्या नहीं हम गिन सकते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ ही रहे। आजकल कोई भी अवतार है, महाराष्ट्र में अभी हमारी पंढरपुर की यात्रा जा रही है, वहाँ देखेंगे वहाँ हरेक व्यक्ति अपने बाबा जी गुरु को अवतार समझते हैं, तो उसका ये क्या है, कोई गवर्निंग बॉडी है कोई अथॉरिटी है जो कहेंगे कि ये है ये नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने छह प्रकार के अवतारों का वर्णन सनातन गोस्वामी को किया था। पुरुष अवतार ये तो विष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। युग अवतार हरेक युग में उस युग का धर्म सिखाने वाले। गुण अवतार तत्व रज तम तत्व गुण उसके लिए विष्णु स्वयं आते हैं, क्योंकि विष्णु के अलावा और कोई सत्वगुण का आधार नहीं बन सकता। रजोगुण ब्रह्मा जी को इंचार्ज बनाया जाता है, तमोगुण भगवान शिव। लीला अवतार विशिष्ट प्रकार की लीला के लिए मत्स्य, कूर्म, हयग्रीव, परशुराम। परशुराम तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मत्स्य, कूर्म, नरसिंहदेव ये विशिष्ट लीला अवतार है। शक्त्यावेश अवतार, शक्ति आवेश। जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस है और उसने अपना हाथ ऐसे कर दिया और 40-50 गाड़ियां रुक गई, तो आप देखेंगे उसके इसमें इतना बल है कि वो ऐसे अपने एक हाथ से 50 गाड़ी को रोक रहे हैं। हाथ में बल नहीं, उसके यूनिफॉर्म का बल है। वो का जो यूनिफॉर्म है ट्रैफिक पुलिस का, क्योंकि उसके पीछे जैसे अगर कोई पुलिस आपको रास्ते में पकड़ेगा, ये आपने सिग्नल तोड़ा और आप अंदर चार हट्टे कट्टे लोग हैं, आप कहेंगे आप अंदर आओ देखते हैं आपको, हम चार लोग पुलिस को मार सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डबल ऑफेंस हो जाएगा। एक तो सिग्नल तोड़ा, फिर वो सीढ़ी बजाएगा, फिर बाकी सारे पुलिस आ जाएंगे। अब एक पुलिस आपके पीछे था क्योंकि आपने सिग्नल तोड़ा, अभी सारी पुलिस यंत्रणा आपके पीछे है। की बात यही है कि हमने एक व्यक्ति का ऑफेंस नहीं किया है, हमने सारे डिपार्टमेंट का ऑफेंस किया है, के पीछे डिपार्टमेंट की पावर थी। तो वैसे कभी कभी एक जीव को, एक लिविंग एंटिटी को भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो वैष्णवधर्म कितना ब्रॉड माइंडेड है, जीसस, मोहम्मद, भगवान बुद्ध, परशुराम, जिस किसी व्यक्ति ने पृथ्वी पर प्रचार करके लोगों के मन में ये विश्वास पैदा किया है, आध्यात्मिक विश्वास। इस विषय के दो मुख्य पहलू होते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है ये हमको विश्वास हो सकता है। सबसे प्रथम, इस जीवन में, इस धरती पर, इस वर्तमान जीवन में कोई कहेगा कि आप यहाँ पर सुखी हो सकते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। कहेगा कि हाँ इधर ही रहो, थोड़ी फैमिली रखो, धंधा नौकरी वगैरह करो, सुखी हो जाओ। ट्रांसेंडेंटल होने के लिए, ट्रांसेंडेंटल प्रीचिंग, आध्यात्मिक प्रचार होने के लिए वो व्यक्ति ये विश्वास लोगों में निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए कि ये आपका वास्तविक घर नहीं है। दूसरी विषय वस्तु है फिर वो कौन सी जगह है, वो कौन सा रेल में जहाँ पर हमको जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये बताया कि जो कहेगा कि ठीक है जब करो तब करो, लेकिन यहीं पर रहना है हमको, फॉल शॉर्ट, वो ट्रांसलेटर नहीं हो सकता। दिव्य होने के लिए उस प्रचारक को मालूम होना चाहिए, प्रभु ने कहा जीसस देखो, मोहम्मद देखो, बाकी कोई भी बोनाफाइड प्रीचर देखो, किसी ने भी अपने लोगों से ये नहीं कहा कि आपको यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना, यहीं पे जीना, ना, हम यहाँ के नहीं है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। ऑफकोर्स श्री प्रभुपाद जी इतना फोर्सफुली और रिपीटेडली किसी ने नहीं कहा था। गुण अवतार, लीला अवतार, युगावतार, पुरुष अवतार, मनवंत शक्तिवेश अवतार और अंत में मनवंतर अवतार। हर एक मनवंतर में मनु से आता है मनुष्य, और मैन ये वर्ड भी उधर से आता है, मैन, ह्यूमन, उसमें भी मैन है। तो मनवंतर मनु होते हैं भगवान ब्रह्मा जी के, ब्रह्मदेव के अनुशासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स। जैसे हर एक कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, कोई कलेक्टर होता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये मनु होते हैं लाखों 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 साल के लिए। अब मनु है वैवस्वत मनु, हमारे जो मनु है वो। तो ये हुए 6 प्रकार के अवतार। अगर किसी अवतार का शास्त्र में वर्णन नहीं है तो फिर उसका अवतार नहीं समझ सकते। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे, जैसे एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से कहा मेरे गुरु अवतार है, मैंने क्यों, एक व्यक्ति शराब पी रहा था, उन्होंने उसकी शराब छुड़ा दी। प्रभु ने कहा फिर मैं तो 10,000 गुना अवतार हूँ, अगर एक ड्रंकर्ड की शराब छुड़ाने से आपके गुरु अवतार बनते हैं तो मैं तो उनसे 10,000 टाइम्स बेटर अवतार हूँ। ये हमारी बुक पढ़ने से तो लाखों लोगों ने सब छोड़ दिया है। तो केवल मामूली तरह से प्लास्टिक कोई बैंडेड टाइप का टेक्निक से ये करना, ये अवतार नहीं होते। तो वास्तविक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, के पास ये पावर ऑफ अटॉर्नी है कि एक अधिकारी, अधिकृत व्यक्ति है वो, वही अवतार हो सकता है। कई लोगों की धारणा ऐसी है कि क्योंकि हम मानव हैं, हमारी 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान हैं, हमने हमारी तरफ से जो भी कुछ सुंदर है उससे हमने भगवान को ऐसे ही बना दिया है। भगवान एक हमारी मन की कल्पना है। जो पर प्रभुपाद जी का ऑब्जेक्शन ऐसा है कि व्यासदेव, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इतने महाप्रभु, ये सब भौतिक दृष्टि से भी जगत मान्य विद्वान लोग थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यासदेव जैसा पूरे मानव समाज का हित चिंतक कोई हुआ नहीं होगा। तो वो व्यक्ति जब किसी को कुछ परामर्श दे रहा है, कुछ एडवाइस दे रहा है, तो क्या वो मामूली पुतले या मामूली मूर्ति पूजा करने की सलाह देगा? क्यों, क्या उसका कारण हो सकता है? इसलिए ये आज के 200-300 सालों के ये सारे डाउट्स हैं, हमको इससे बचना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी का मतलब होता है जिसके पास डाउट का मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए नाम जप, प्रसाद वितर ग्रहण और श्रीमद् भागवत के वर्ग में या श्रीमद् भागवत की कथा में रुचि लेना, इससे हमारे ये सारे डाउट्स निकल सकते हैं। तो हम हैं चित्कण, लेकिन आध्यात्मिक जगत से यहाँ आने के बाद इतना हमारा मन खुल मिल गया है। वैसे तेल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकता, वैसे आध्यात्मिक और भौतिक कभी मिक्स नहीं हो सकते। चाहे 1000 साल तक तेल की बोतल में थोड़ा पानी डाल के रखो, वो कभी मिक्स नहीं होगा, अलग ही रहेगा। वैसे हम भी भौतिक, अनेक भौतिक शरीर ली होगी हमने, लाखों ली होगी हमने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, लेकिन अभी हमारी विचार प्रणाली भौतिक हो गई है। दैट इज अ डेंजर। जैसे कई बार एक डॉक्टर पेशेंट से कहते हैं हौसला रखो, हौसला रखो, ये दवा काम करेगी, मुझे पूरा भरोसा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन पेशेंट कहते हैं नहीं, अभी तो कोई फोई नहीं है डॉक्टर, अभी सब हो गया। डॉक्टर अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी दवा काम कर रही है, मुझे पूरा होप्स है कि नहीं? कभी ये भी आपका अनुभव होगा ऐसे। तो इसीलिए हम सब पेशेंट जैसे हैं और ये आचार्य हमारे डॉक्टर हैं, और वो बार बार अलग अलग प्रार्थनाएं अलग अलग तरह से वो कह रहे हैं कि डोंट लूज होप, काम करेगा। अब मुझे कल तो काम नहीं किया, अभी सुबह तक काम नहीं किया, ऐसे बच्चों से उतावला होना भी नहीं चाहिए। एक पॉल नाम का लड़का था जो प्रभुपाद जी से मिला था, बोले स्वामी जी मेक मी ए ब्राह्मणा इमीजिएटली। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता ना, ब्राह्मणा तो के गुण धीरे 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 आने चाहिए। तो इसीलिए उत्साह निश्चय, कई चीज़ों में उत्साह, नाम जप करने में, भक्तों का संग करने में, भागवत, और निश्चय एक ना एक दिन जरूर मन से विश्वासपूर्वक ये मेरी अनुभूति हो जाएगी। और ये अनुभूति कैसी है, अगेन पुनः भागवत में ही उदाहरण दिया हुआ है। पेट भर प्रसाद लेने से आप किसे पूछते हैं मैं और एक पूरी ले लूं? नहीं, आप खुद जानते हैं कि अभी पेट भर गया। हमारी प्रोसेस, हमारी प्रणाली का ये सर्टिफिकेट है। भगवान की अनुभूति हो रही है कि नहीं, आनंद इस प्रोसेस में मिल रहा है कि नहीं, आप जज होंगे इसके। ये नहीं कि 10 साल में भक्ति किया तो आनंद तो मिलना ही चाहिए ना, नहीं। एवरी डे पदम पदम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते संकीर्तनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम का सागर बढ़ रहा है। लेकिन ये हर एक पद पर आपको इसकी अनुमति होगी। आगे नंद और यशोदा की जो विशेष स्थिति है उसके बारे में कुंती महारानी उनकी स्तुति करती है। यहाँ पर नंद महाराज का भी नाम आता है, नंद गोप कुमार और देवकी का भी। क्या है ये दो पति पत्नी में, दोनों का नाम एक साथ दिया जाता है, वो भी श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में। और कृष्ण भगवान का नाम, कृष्ण भगवान की स्तुति ये दो भक्तों को सामने रखकर की जाती है। मतलब कितने स्पेशल हैं ये भक्त, इसके बारे में हम देखेंगे आने वाले वक्त में। हरे कृष्ण। रूपाद की नंदराज भागवत महापुराण की। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स आपके पीछे?
आपने भी बोला था इंकार्नेशन वर्ड है, enters in the flesh, but that incarnation is used mostly in our scriptures. Why another word is not used, which is proper? The incarnation is not that which is regular, that which is entering in the flesh, which is spiritual fully.
आप पूछ रहे हैं कि हम इंग्लिश में इंकार्नेशन क्यों यूज करते हैं? हाँ। क्योंकि इंग्लिश भाषा का दोष है वो, उसमें उसमें और कुछ है ही नहीं, करेंगे क्या? इंग्लिश लैंग्वेज कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है। ये जैसे लोकप्रिय होती गई बिजनेस की लैंग्वेज है ये, इससे पैसा कमाते हैं लोग। दैट मीन्स यून के लिए इंग्लिश तो एकदम कमज़ोर है, डॉग के लिए भी यू, गॉड के लिए भी यू, ये कोई कल्चर है के लिए, ये उस भाषा का दोष है। अब कर्म धर्म संयोग से उसको सब सलाम करते हैं तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है। आचार्य ऐसे हैं, अटवादी लोग नहीं है वो। मेरा काम है कि भगवान का नाम का प्रचार होना चाहिए। आज प्रभुपाद जी आए देख रहे हैं कि इंग्लिश भाषा जगत मान्य है, चलो इंग्लिश। कल समझो कुछ हो गया, तीसरा महायुद्ध हो गया या सब होने वाला है ही, वो महायुद्ध कोई रुकता नहीं। वो पिछले 3000 वर्षों में एक व्यक्ति ने गणना की है 253 के आसपास वर्ष बीत चुके हैं जिस वर्ष में पूरे दुनिया में कोई युद्ध नहीं हो रहा था। सोचो कितना कम परसेंटेज है। 3000 वर्षों में रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 253 ईयर्स ऑफ नो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे हो नहीं रही है। तो भौतिक जगत में युद्ध तो होता ही है। 500 साल बाद समझो और कोई भाषा ऊपर आ गई तो ये सारे बुक्स उस भाषा में ट्रांसलेट होने गए। हमारा प्रेम इंग्लिश से नहीं है, हमारा प्रेम है कि हमारा काम होना चाहिए। ये तो कुछ नहीं है, रूप गोस्वामी के जो भक्तिरसामृत सिंधु में कई कई भाव के आविष्कार हैं, प्रेम वैचित्य कुट्टमित्त दो तीन तो मुझे याद है। तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं देर आर नो इंग्लिश वर्ड्स फॉर दिस इमोशंस। राधा कृष्ण किसी झूले में या किसी कुंज में आए हैं, राधा रानी के मन में पहले से ये डर है, पिछले समय की तरह से भगवान कृष्ण कहीं छोड़ के चले ना जाए। अचानक वो जो पिछली स्मृति है वही ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाती है। भगवान का वियोग कितना कठिन है सहन करना, श्याम सुंदर का वियोग ये सोचते सोचते अचानक वो भाव राधा रानी के मन पर ऐसा छा जाता है कि वो रोने लगती है कि श्याम सुंदर छोड़ के चले गए। तो बाजू में बैठे हैं वो, पास में ही है। रूप गोस्वामी कहते हैं ये भी एक प्रेम का भाव है कि प्रेमी का प्रेमास्पद प्रेयसी या प्रियकर सामने होने पर भी वो न होने की भावना होती है। प्रभुपाद ने कहा टू द बेस्ट वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब इट इन इंग्लिश, जितनी हमारी शक्ति है और जितनी इंग्लिश लैंग्वेज की शक्ति है उतना हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये लैंग्वेज बहुत कमकुवत है, लैंग्वेज कमजोर है। क्या करेंगे। एक दूसरे देखा जाए तो संस्कृत भाषा में किसी चीज़ की जो अंदर की भावना है वो बाहर आती है, और जो प्राकृत लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश फ्रेंच जर्मन वो केवल एक बाह्य दृष्टिकोण का उसमें ये होता है। जैसे इनकार्नेशन कि जो चीज़ स्पिरिचुअल है वो जब हड्डी मांस का पुतला बन के आती है उसको इनकार्नेशन बोलते हैं। ये ऐसे प्रतीत होता है लेकिन ऐसा है नहीं ना, लेकिन उनका दृष्टिकोण बाह्य है। एक चर्म चक्षु होते हैं और एक दिव्य चक्षु या अंतर चक्षु होते हैं। तो आप देखेंगे हमेशा इंग्लिश ग्रीक लैटिन ये उसमें चर्म चक्षु के ऊपर ज़्यादा जोर जाता है, बताया था कि नहीं अंदर की आंखों से देखो। और कोई प्रश्न है। What did you say last? How can we compare?
How can we have so that quality we have given that same quality earlier?
Brahma ji, this is in the teaching of Lord Chaitanya. There is a book called Teaching of Lord Chaitanya. Prabhupada has explained, Krishna has all qualities. Krishna is like an ocean of qualities. A little portion of Krishna's qualities are in Lord Narayan, who is also Vishnu Tattva. Lord Shiva is in a different Tattva. He is not living in it like you and me, but he is also not Narayan or Vishnu. Lord Shiva has his own Tattva called Shiva Tattva. Lord Brahma is the best of all living entities. So he has 50 of the qualities which are possessed by Lord Krishna. He has 64, but that doesn't mean only 64. The 64 number is not important. Krishna has unlimited qualities. So Brahma has 50 of those qualities in a minute form. Just like if there's a river, how much water there could be in a river? Many, many thousands of tons, right? But if you bring two buckets in your home and I bring one glass, the water is the same, but my water is less than your water. So if we compare your two buckets with the size or the quantity with my one glass, my glass is small. But if you taste the water in your bucket and my glass, the water is the same, right? So when it is said that Brahma has, we have the same qualities, the same quality, but the size is very small. Then Hare Krishna. Thank you for your question. Srila Prabhupada ki, Anantarashvam Bhagavatam Purana ki, Tai Gaur Bhimanande ki.